Shankar Shri Srimad, His Divine Grace, S. Bhakti Vedanta Swami, Srila Prabhupada King, ISKCON Deputy Founder, Srila Prabhupada King, Sri Sri Radha Govinda Dev Ki, Sri Sri Sitaram Lakshmana Hanuman Ki, Sri Sri Panch Tattva Ki, Samaved Gaura Bhakta Vrinda Ki, Nitai Gaura Premanande. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda.
स्वीकार किए जाते हैं,
और अन्य दो प्रभु उनके दिव्य प्रेममयी सेवा में सामान्य जीवों को ये शिक्षा देने के लिए लगे रहते हैं कि हम में से हर एक जीव श्री चैतन्य महाप्रभु पर आश्रित है। चैतन्य चरितामृत में ही अन्यत्र आदि लीला 5:142 में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। कृष्ण एकमात्र ईश्वर है और अन्य सभी अर्थात विष्णु तत्व तथा जीव तत्व भगवान की सेवा में रत रहते हैं। विष्णु तत्व यथा नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत और जीव तत्व यथा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद दोनों ही भगवान की सेवा करते हैं, किंतु विष्णु तत्व सेवकों तथा जीव तत्व सेवकों में अंतर समझना आवश्यक है। जीव तत्व सेवक अर्थात गुरु वास्तव में ईश्वर का सेवक होता है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा जा चुका है, परम जगत में ऐसा अंतर नहीं होता, फिर भी परमेश्वर तथा उनके आश्रितों में भेद करने के लिए ऐसे अंतरों पर ध्यान देना आवश्यक है। ओम अज्ञान तिमिरान्तश्च ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज पंच तत्व का वर्णन करते हुए इस श्लोक को लिखते हैं। तो जो चार प्रमुख संप्रदाय हैं उनमें हम मध्वाचार्य के संप्रदाय में आते हैं, जो ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी विख्यात है। तो ऐसे चार संप्रदायों में अलग अलग ग्रंथों की प्रमुखता है और विशेष रूप से चारों जो संप्रदाय हैं वो गीता और श्रीमद् भागवतम को प्रमुख रूप से स्वीकार करते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं, उन सिद्धांतों का अपने संप्रदाय में आधार लेते हैं। तो लेकिन ये जो गौड़िया संप्रदाय है इसकी विशेषता क्या है, क्योंकि इसमें एक विशेष ग्रंथ है जो और किसी संप्रदाय में नहीं है और वो है श्री चैतन्य चरितामृत। तो भगवान कृष्ण जब द्वापर युग के अंत में अप्रकट हो जाते हैं और फिर बहुत लंबा समय बीतता है, कलयुग की शुरुआत होती है, कलयुग के लगभग 5,000 साल बीतते हैं, तो कृष्ण के मन में एक विचार आता है। भगवान सोचते हैं कि अरे मैंने भगवत गीता का इतना बड़ा प्रवचन दे दिया है। पहले तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन का प्रवचन सुना, हम भी कई प्रकार के प्रवचन सुनने पड़ते हैं अलग अलग लोगों से ना चाहते हुए भी। तो पहले तो अर्जुन अपनी बड़ी विद्वत्ता का प्रदर्शन कर रहा था, लंबी लंबी बातें बोलते जा रहा था अर्जुन, लेकिन बोलने से क्या उसकी गति क्या हो गई, अर्जुन विषाद में चला गया, है ना, विषाद, अर्जुन विषाद योग। तो ऐसे अर्जुन बोलते रहे बोलते रहे, कृष्ण सुनते रहे सुनते रहे, फिर कृष्ण ने पूछो कितना बोलोगे, कुछ सीमा होनी चाहिए, पंडित जैसी बातें करते हो लेकिन तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम अज्ञानी हो, मूर्ख हो। तो भगवान ने कहा चुप बैठो, अभी सुनो तब सुनो। तो गीता में भगवान ने जितनी बार सुनो सुनो यूज किया है उससे पता चलता है कि कृष्ण बहुत थप्पड़ लगा के चुप और सुनो। तो जीव के लिए भी वैसे ही है कृष्ण भक्ति में। तो ऐसे भगवान ने जब बोलना शुरू किया तो अर्जुन बहुत गंभीरता से सुनने लगे, और भगवान वास्तव में एक विज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे, और वो विज्ञान क्या है, भक्ति योग। हाँ, भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग धन। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ये जो भक्ति है वह हर एक जीव का प्रमुख धन है, और उस धन के बारे में जानने हेतु भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया है। और वास्तव में भगवत गीता क्या है, धर्म शास्त्र है, इसलिए गीता की शुरुआत ध से होती है, ध मतलब धृतराष्ट्र, इतना सुंदर ग्रंथ है। लेकिन कौन बोल रहा है, किसके नाम का उच्चारण सबसे पहले हो रहा है, धृतराष्ट्र, आसुर, आसुरों के नेता है। तो ऐसे गीता का एंड होता है म से। तो आचार्य जन कहते हैं कि गीता का पहला शब्द धा है और उसका आखिरी शब्द म है, तो इसलिए धर्म शास्त्र है, धर्म की स्थापना है। तो भगवान भगवत गीता का उपदेश प्रदान करते हैं, और वो धर्म क्या है, भगवत सेवा। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, गीता में कृष्ण कहते हैं धर्म श्रगलानी। जब अधर्म बढ़ता है उसका मतलब क्या होता है कि जीव जब भगवत स्मरण भगवत सेवा को भूल जाता है, तो भगवान वो स्मरण दिलाने के लिए अपनी सेवा में लगाने के लिए इस जगत में अवतरित होते हैं, और कोई कारण नहीं है भगवान का इस जगत में अवतरित होने का। तो ऐसे भगवान कृष्ण कलयुग के शुरुआत में सोच रहे थे कि अरे अभी तो ये कलयुग शुरू हो गया है और युग अवतार का टाइम आ गया है, हर युग में युग अवतार अवतरित होता है। तो उन्होंने सोचा अभी युग अवतार का समय आ गया है और बहुत दिन बीते हैं, मैंने जीवों को जो असली धन है वो दिया नहीं है। असली धन क्या है, अनर्पित चरिम चिरा करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयतु उज्ज्वल उन्मत्त रसा सो भक्ति श्रेया। जो उन्मत्त उन्नत उज्ज्वल रस है, माधुर्य प्रेम है, सो भक्ति श्रेया, अपनी जो भक्ति है वो मैंने लंबे समय से नहीं दी है, अचिरा बहुत लंबा समय बीता। हम भगवान बहुत रेयरली आते हैं, और रेयरली माधुर्य प्रेम या भगवत भक्ति का जो सर्वोत्कृष्ट स्थिति है, धरातल है, वो सर्व सामान्य जीवों को अवेलेबल कराते हैं। तो उस समय भगवान ने सोचा कि मुझे जाना होगा, अभी मैं स्वयं जाऊंगा और जाकर क्या करूंगा, जिस प्रेम को पाकर जो जीव है पूर्ण रूपेण तृप्त हो सकता है, वो भगवत प्रेम मैं सबको प्रदान करूंगा। पात्र पात्र विचार नाहि नाहि स्थान स्थान, चैतन्य महाप्रभु। तो वही कृष्णा चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होने के लिए अपने दिमाग में सोचने लगते हैं, सोचते हैं कि मैं पात्र और अपात्र का विचार नहीं करूंगा, कोई व्यक्ति क्वालिफाइड है अनक्वालिफाइड है, शिक्षित है अशिक्षित है, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, चाहे वो गृहस्थ है ब्रह्मचारी है वानप्रस्थ है सन्यासी है शूद्र है नीच यवन आदि है, उन सबको मैं कृष्ण प्रेम प्रदान करना चाहता हूं। इस विचार ये विचार करते हुए कृष्ण सोचे कि मुझे अभी अवतरित होना है,
तो भगवान जब अवतरित होते हैं तो वो पहले नहीं आते, क्या नहीं करते, भगवान पहले नहीं आते, पहले अपने सीनियर भक्तों को आगे भेजते हैं। हाँ, जैसे कोई महान गुरु गुरुजन आते हैं तो पहले अपने सीनियर फॉलोअर्स को भेजते हैं, जाओ अरेंजमेंट करो, मैं आ रहा हूं। राष्ट्रपति आने से पहले, प्राइम मिनिस्टर आने से पहले, बड़े बड़े उनके जो नेतागण है वो जाते हैं, अरेंजमेंट आदि करते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान अपने पार्षदों को, प्रमुख भक्तों को पहले भेजते हैं। तो वैसे ही भगवान ने सोचा कि मुझे जाना चाहिए, मैंने भगवद गीता का उपदेश दिया और उपदेश के अंत में मैंने कहा सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। तो कृष्ण सोचे ये क्या हो गया, मैंने कहा मेरी शरण ग्रहण करो, एक व्यक्ति की, वो दूसरे कई सारे लोगों की शरण ग्रहण कर रहे हैं। तो भगवान बहुत चिंतित हो गए। हाँ, जैसे भगवान ने गीता बोलने के बाद थक गए थे, तंग आ गए थे जीवन से, कई बार होते ना बोल बोल के थक जाते हो, फिर कहते कि अभी बस बहुत हो गया, अभी मैं आप मौन धारण करूंगा, फिर बोलूंगा नहीं। तो वही जीव को अब बोलते रहो उसका स्वभाव कुत्ते की पूंछ की तरह है, वो टेढ़ा ही रहेगा। कहा जाए भगवत सेवा करो, हाँ नहीं माया की सेवा करूंगा। तो यही है, भगवान ने इतना अच्छा गीता का उपदेश दिया, इतना सरल, अपने बारे में खोल के बताया। कोई व्यक्ति अपने बारे में बोलने लगता है, एक तो सबसे पहले उसको बहुत आनंद की अनुभूति होती है। आपको होती है कभी अपने बारे में बोलने से, भगवान के बारे में बोलने से होती या नहीं होती, लेकिन जब व्यक्ति अपने बारे में बोलने लगता है तो एक मुख कम लगता है, उसको लगता है कई मुख होने चाहिए। तो भगवान जब अपने बारे में बोल रहे थे खोलते हुए सारी चीजों का, उन्होंने सब चीजों को बोला अर्जुन के समक्ष और अर्जुन तैयार हो गए। गीता सुनने के बाद अर्जुन के शरीर में जो शक्ति सामर्थ्य जागृत हुआ वो महाभारत के युद्ध में पता चलता है। लेकिन सुनने के बाद में फिर से एक प्रॉब्लम आ गया था, 18 दिन के युद्ध में बीच में ही अर्जुन परेशान हो गए, फिर से विषाद में चले गए। एक तो शुरुआत में चले गए थे विषाद में, देखा कौन कौन मुझसे युद्ध करना चाहता है, मैं देखना चाहता हूँ कृष्ण सेनयोर उभयोर मध्ये प्रथम स्थापय मे अच्युत, हे अच्युत ले चलो मुझे दोनों सेनाओं के बीच में। भगवान तो बहुत आज्ञाकारी है, कृष्ण से हर चीज हम सीख सकते हैं, परफेक्ट आचार्य है। इसलिए कृष्ण मंदे जगत गुरु, गुरु का मतलब है आचार्य। तो अद्वैत आचार्य का नाम भी आचार्य क्यों है, क्योंकि अपने आचरण से भगवत भक्ति कैसे की जाती है उसकी शिक्षा जो देते हैं उनको अद्वैत आचार्य कहा जाता है। तो ऐसे भगवान पूर्ण है, परफेक्ट है। तो इस प्रकार से भगवान सब चीजों की शिक्षा देते हैं। और बीच में जब अर्जुन फिर से विषाद में चले गए, फिर से वो गीता का उपदेश भूल गए, तो भगवान परेशान हो गए। अभी तो एक हफ्ता ही नहीं हुआ, मैंने इतना अच्छा प्रवचन दिया, कान पकड़ पकड़ के सुनाया सिखाया, फिर से वही गलती, कितना दुख होता होगा भगवान को। तो भगवान कृष्ण जब अभिमन्यु की वृत्ति हो गई तो उसको देखकर तो अर्जुन रोने लगे, उस चीज को सुनकर अर्जुन जोर जोर से रोने लगे। जब उनका दाह संस्कार आदि हो रहा था तो भगवान ने सोचा ये क्या हो गया, मैंने आगे तो उपदेश दिया था न जायते न मृयते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वान भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अरे अर्जुन, अभी तो आत्म तत्व की व्याख्या मैंने की थी पूरे दूसरे अध्याय में, ऐसे नहीं कि भगवान अध्यायों के अनुसार गीता बोल रहे थे, अर्जुन लोग अभी दूसरा अध्याय शुरू कर रहा हूं, नहीं वो एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे रहे थे। हमारे दिमाग में घुसने के लिए वो व्यास देव ने अलग अलग अध्याय बनाए, अलग अलग सीक्वेंस बनाया, भगवान ने तो एक साथ बोलना शुरू किया। तो जब अर्जुन रो रहे थे अभिमन्यु के कारण, तो भगवान भी आकर अर्जुन के पास जोर जोर से रोने लगे। क्यों रोने लगे, तो परेशान हो गए। और फिर अर्जुन देखने लगे, अरे ये क्या हो गया, कृष्ण को कभी मैंने रोते हुए नहीं देखा, आज जोर जोर से रो रहे हैं, तो इनको लगा वो भी रो रहे हैं, तो अर्जुन ने अपना साउंड थोड़ा बढ़ा लिया और तेजी से रोने लगे। अर्जुन और रोने लगे तो भगवान भी कहे कम है, वो भी और रोने लगे, तो फिर दोनों रोते रहे, दाह संस्कार सब कुछ हो गया। तो जो शोक है, विषाद, ये पहला अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शिक्षादायी है गीता का। तो ये जो विषाद था अर्जुन को, तो अर्जुन थोड़े से अपने शोक आदि से थोड़ा ठीक हो गए एक दिन में। फिर कृष्ण के पास जाते कहते, कृष्ण मैं तो रो रहा था कि मेरा पुत्र था, लेकिन आप बताओ आप क्यों रो रहे थे? कहते मैं इसलिए रो रहा था कि गीता तुम्हें उपदेश देने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में घुस नहीं रहा था, इसलिए मैं और अधिक रोना पड़ रहा था मुझे। तो हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी है, भगवान इतना उपदेश देते हैं भक्तों के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, अपने धाम आदि के द्वारा, ग्रंथों के माध्यम से, लेकिन हम वैसे की वैसे हैं, निढल्ले। तो फिर भगवान ने तब सोचा कि चलो अभी कलयुग में फिर से चलता हूं, आता हूं। तो आए किस रूप में आए? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो भगवान कलयुग में पंच तत्व के रूप में आते हैं, पंच तत्व अवतीर्ण चैतन्य रसंगे, पंच तत्व लैया करें संकीर्तन रंगे। हाँ, भगवान कृष्ण पंच तत्व के रूप में अवतरित होते हैं, और यही कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और अपने पार्षदों को आदियों को लेकर महान संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भागवतम में पंच तत्व का वर्णन पहले से ही शुक्रदेव गोस्वामी ने किया है 11वें स्कंद में, निमि महाराज और नवयुगेंद्रों का जो वर्णन है। हाँ, तो उसमें कहते हैं कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्ण सांगो पांकर्ष पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजन्ति सुमेधसा। सुमेधसा एक है कुमेधसा, दुर्मेधसा, मेधा में दिमाग, बुद्धि। तो जो कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वो एक यज्ञ करेंगे। कौन सा यज्ञ करेंगे? स्वाहा नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग में जो वास्तव में बुद्धिमान बहुत दक्ष व्यक्ति हैं, वो एक यज्ञ का सहारा लेंगे। क्योंकि गीता में कृष्ण कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मण नेत्र लोकोय कर्म बंधना, यज्ञ के बिना किए हुए जो कार्य है वो सारे बंधनीय है, कर्म बंधन है। तो जो यज्ञ भगवान विष्णु का एक नाम है, यज्ञ करना में सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। तो कृष्ण कलयुग में आएंगे, उनका वर्ण कैसे होगा? कृष्ण वर्ण, वर्ण का मतलब है उनके मुख में हमेशा वर्णमाला होता है ना, जैसे बंगला में है विद्या सागर वर्ण परिचय, वर्ण परिचय है, तो वैसे क ख ग घ ये सब वर्ण आदि है। तो वैसे ही जिनके मुख में सदैव कृष्ण वर्ण निवास करता है वो श्री कृष्ण चैतन्य है। जो कृष्ण सदैव कृष्ण बोलते रहते हैं वो श्री कृष्ण चैतन्य है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्ण, वो कृष्ण है, कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हैं, लेकिन उनका जो अंग कांति है, उनकी जो देह कांति है वो अकृष्ण है, कृष्ण के समान नहीं है। अकृष्ण का मतलब कैसी है? तेजोमयी, तप्त कांचन है, सुवर्णमयी है, पिघले हुए सोने के भांति है, सोनार अंग। कैसा है महाप्रभु का अंग? सोनार। जैसे आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहां बहुत अच्छे विग्रह है, सोनार गौराम। कौन से गौराम? जोर से बोलिए, हाँ, सोनार गौराम। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु सांग पांगार्ष पार्षदम, उनके वो अपने साथ अपने अंग उपांग और पार्षदों को लेकर अवतरित होते हैं। यज्ञ संकीर्तन प्राय, ऐसे पंच तत्व का जो उपासना करता है वो व्यक्ति वास्तव में कलियुगा में धन्य है। पंच तत्व एक वस्तु नाही किछु में रस अस्वादित तबो विविध विभेद, तो ये कोई अलग अलग नहीं है। तत्व किसी भी हम कथाएं सुनते हैं शास्त्रों में हमेशा दो चीजें होती हैं, एक है लीला विचार और एक है तत्व विचार। तो जो लीला आदि सुनते हैं तो उनके पीछे क्या सिद्धांत है वो जानना आवश्यक है, उससे क्या शिक्षा हमें प्राप्त होती है वो समझना आवश्यक है, और तत्व विचार उस लीला के माध्यम से भगवान कौन से तत्व की स्थापना करना चाहते हैं वो सब चीजें एक साधक को समझना परम आवश्यक है। तो वास्तव में पंच तत्व एक वस्तु नाही किछु भेद, ये जो पांच प्रमुख पर्सनालिटीज हैं कौन है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास और भी और गौरव भक्त वृंद। तो भक्तों के जो मुखिया हैं, लीडर है, वो कौन है, श्रीवास ठाकुर। तो श्रीवास ठाकुर बहुत प्रमुख है, वो हम सबका प्रतिनिधित्व करते हैं भगवान के पास, वो नारद मुनि है। तो इस प्रकार से कृष्ण ही अपने आप को इन पांचों में अलग अलग विभेद करते हैं। वस्तुतः तत्व के द्वारा देखा जाए तो उनमें कोई अंतर नहीं है आध्यात्मिक दृष्टि से, क्योंकि वो सारे दिव्य धरातल पर है। रस आस्वादिते तबो विविध विभेद, भगवान क्या करना चाहते हैं, अलग अलग रूप ये क्यों धारण कर दे, क्योंकि एक चीज वो चाहते हैं रस आस्वादन। क्या चाहते हैं, रस आस्वादन। अलग अलग अवतारों में भी भगवान क्यों आते हैं, सब अलग अलग अवतारों में आने का उनका प्रयोजन यही होता है कि वो विशेष रसों का अपने विशेष भक्तों के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं। भगवान राम, नरसिंह, वराह, कूर्मा, ये सारे जो अलग अलग अवतार हैं, भगवान के असंख्य अवतार हैं, वो सारे केवल रस का आस्वादन करने हेतु और अपने विशेष भक्त के साथ आदान प्रदान करने हेतु, भक्ति का प्रेम का आदान प्रदान जिसमें उस भक्त को आनंद देते हैं और उस भक्त के प्रेम के द्वारा भगवान आनंद अनुभूत करते हैं। तो इस आस्वादन के लिए भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं। पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपतम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो वह कहते हैं कृष्णदास कविराज कि मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो भक्त, भक्त के विस्तार, भक्त के अवतार, शुद्ध भक्त और भक्त शक्ति पांच रूपों में प्रकट हुए हैं। तो ये पांच रूप कौन कौन से हैं, पंच तत्वात्मकम कृष्ण, जो कृष्ण है वो स्वयं भक्त के भक्त है चैतन्य महाप्रभु, और जो नित्यानंद प्रभु है वो भक्त भाव में है, और जो अद्वैत आचार्य है वो भक्त अवतार है, और जो श्रीवास है वो शुद्ध भक्त है, और जो पंडित गदाधर है वो भगवान की शक्ति है। तो इस प्रकार से कृष्ण पूर्ण है, इसलिए वास्तव में चैतन्य महाप्रभु को जो कोई व्यक्ति प्रणाम करता है तो वो प्रणाम इस मंत्र के द्वारा पूरा होता है, अन्यथा वो महाप्रभु का प्रणाम पूरा नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो इस प्रकार से महाप्रभु को एक पूर्ण प्रणाम है। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि भगवान कृष्ण इन पांचों विग्रहों में प्रकट होते हैं, क्यों, क्योंकि आस्वादन करने के लिए। कृष्ण माधुर्य एक अद्भुत स्वभाव आपन आस्वादित कृष्ण करे भक्त भाव, कि कृष्ण प्रेम या कृष्ण की सेवा में इतना अधिक दिव्य आनंद है कि भगवान कृष्ण भी उस दिव्य आनंद की अनुभूति करने के लिए और उसका आस्वादन करने के लिए भक्त के रूप में आते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य,
इति भक्त भावधरे चैतन्य गोसाई भक्त स्वरूप बतारा नित्यानंद भाई भक्त अवतार तार आचार्य गोसाई यही तीन तत्व सबे प्रभु करी गाय एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जान दुई प्रभु सेवे महाप्रभु रक्षरान यही तीन तत्व सर्वाराध्य करी माने चतुर्थ जय भक्त तत्व आराधक जाने। इस प्रकार से कृष्णदास देवराज कहते हैं कि वास्तव में जो अद्वैत आचार्य हैं वो साक्षात कृष्ण ही हैं, स्वयं भगवान ही हैं, लेकिन भक्त अवतार के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। तो ये अद्वैत आचार्य कौन है इसका वर्णन गौरवर्णादेश दीपिका में किया गया है। ब्रजे आवेश रूपत्वा विव योगी सदाशिव सयवाद्वैत गोस्वामी चैतन्याभिन्न विग्रह। कि ये जो अद्वैत आचार्य हैं वो वास्तव में महाविष्णु हैं या सदाशिव के मिलित विग्रह हैं, और ऐसे अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न हैं। तो भगवान चैतन्य अवतरित होने से पहले अपने प्रमुख प्रमुख पार्षदों को इस जगत में वो भेजते हैं, जैसे सबसे पहले जगन्नाथ मिश्र, सची माता, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, माधवेंद्र पुरी, ईश्वर पुरी, परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, बहुत सारे वैष्णवों को महाप्रभु कृष्ण सबसे पहले भेजते हैं, और पूरे गौड़ देश, बंगाल का जो भूमि है उसको पंच गौड़ या गौड़ देश कहा जाता है, जहां अलग अलग स्थानों में सारे महान महान विभूतियां जन्म लेती है और वहां प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि महाप्रभु का आगमन होने वाला है। तो ऐसे जो अद्वैत आचार्य हैं उनका आज प्राकट्य हुआ था। कहां प्राकट्य हुआ था? उनका जो प्राकट्य स्थान है, आविर्भाव स्थान, वो अभी भारत में नहीं है, बांग्लादेश में है। सिलेट जो शहर है उसके पास एक गांव है जिसका नाम है नवग्राम, और ऐसे नवग्राम में एक नरसिम्हा के महान भक्त रहते थे जिनका नाम था कुबेर पंडित, और उनकी माता थी नाभा देवी। जो कुबेर पंडित हैं वो वास्तव में स्वयं जो देवताओं के जो खजानजी हैं, खजानजी कैशियर, जो कुबेर हैं वो स्वयं कुबेर उद्योगों के जो लीडर हैं, वो महाप्रभु की लीला में अद्वैत आचार्य के पिता के रूप में प्रकट होते हैं, और उनकी जो पत्नी है कुबेर मिश्र की या कुबेर पंडित की जिनका नाम है नाभा देवी। तो ऐसे वारेंद्र ब्राह्मण परिवार में अद्वैत आचार्य का जन्म होता है, और क्योंकि ये जो कुबेर पंडित थे बहुत वृद्ध हो रहे थे, जैसे नंद महाराज बहुत लंबे समय के बाद कृष्ण पुत्र रूप में प्राप्त हुए, तो वैसे ही ये काफी वृद्ध होते जा रहे थे, तब अद्वैत आचार्य के रूप में इनको इस पुत्र की प्राप्ति हुई। जब अद्वैत आचार्य का जन्म हुआ तो सारा गांव दौड़ के आया उस बालक का मुख देखने के लिए, और देखा कि इसकी आंखें तो कमल के भांति हैं, इसलिए सोचा इसका नाम क्या होना चाहिए, कमलनयन, या फिर क्या नाम रखा उनका, कमलाक्ष। तो उनका पूरा नाम था कमलाकांत वेद पंचानन, जैसे होता है ना कमलाकांत वेद पंचानन। महाप्रभु का नाम था, नाम क्या था, विश्वंबर जगन्नाथ मिश्र, है ना, और नित्यानंद प्रभु का था बंडोपाध्याय, सरनेम क्या था, बंडोपाध्याय मुखर्जी। इस प्रकार से ये कमलाकांत वेद पंचानन जिनका नाम श्री कमला का कमलाक्षर था, 1434 में अवतरित हुए थे उस गांव में। तो ये जब बालक ही थे तो वहां के जो राजा थे दिव्य सिंह ऐसे कुछ नाम था, उनके पुत्र के साथ ये हमेशा खेला करते थे स्कूल शादी में। तो एक दिन ये दोनों राजा का जो पुत्र है राजकुमार और ये कमलाक्षर खेलते खेलते एक दुर्गा देवी के मंदिर में गए, तो राजकुमार तो बहुत लंबा दंडवत कर रहा था दुर्गा देवी को, अरे कमलाक्ष खड़ा था, वो चिल्ला रहा था राजकुमार, अरे
प्रणाम करो प्रणाम करो,
तो नहीं करूंगा, प्रणाम करो नहीं करूंगा, तो थोड़ा राजकुमार गुस्सा हो जाता है। अद्वैत आचार्य को गुस्सा आ गया, जब अद्वैत आचार्य को गुस्सा आ जाता है ना, तो साक्षात महाविष्णु है, महाविष्णु का विराट रूप है, विराट शरीर है, तो जब उनका विराट शरीर है तो जब गर्जना भी करेंगे तो विराट गर्जना करेंगे। हाँ, हुंकार कहा जाता है उसको, क्या कहा जाता है, हुंकार। उनकी आवाज से ही कृष्ण की नींद टूट गई थी, इसलिए उनको ये जगत में अवतरित होना पड़ा था। तो जब उन्होंने जोर से हुंकार गर्जना की, उनकी आवाज से वो जो राजकुमार था मूर्छित हो गया। क्षण में उसका जो सेवक वगैरह आ गए, राजा आ गया, कुबेर पंडित आए दौड़ते हुए, क्या कर दिया मेरे बच्चे ने, अरे डर गया अभी। अद्वैत आचार्य एज ए ह्यूमन, ह्यूमन मींस इस लीला में वो क्या करते हैं, एक जो एंट हिल है, एंट हिल को क्या कहते हैं, चिट्टियों का जो होता है ना
बड़ा दीमक,
जो भी एंट हिल के नीचे जाके छुप गए, तो कुबेर पंडित ढूंढने लगे, बालक कहाँ गया, कान पकड़ के ले आए अद्वैत, कमलाक्ष इधर आओ, क्या किया इस राजकुमार के साथ, मार दिया क्या तुमने, कहते नहीं नहीं ये मरा नहीं है, केवल मूर्छित हुआ है, अभी मैं इसको उठाता हूं। तुरंत कमलाक्ष ने चरणामृत लाया, भगवान विष्णु के चरण कमलों का धोया हुआ जो जल है उसको लाया, राजकुमार को पिलाया, तो वैसे वो उठ के खड़ा हो गया। तो कुछ दिनों के बाद बड़ा फेस्टिवल था वहां बांग्लादेश के उस टाउन में, नवग्राम में, तो वहां कुबेर पंडित, वो राजकुमार, कमलाक्ष, अद्वैत आचार्य और राजा आदि सारे लोग निकल पड़े उस फेस्टिवल में, उसी दुर्गा मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो जब दर्शन करने के लिए गए तो सब लोग प्रणाम कर रहे थे, राजा भी प्रणाम कर रहा था, अद्वैत आचार्य के फादर भी प्रणाम कर रहे थे, मंत्री आदि प्रणाम कर रहे थे, लेकिन देखा कि एक बालक खड़ा है, ऐसे सेना तान के खड़ा है, किसके सामने, देवी दुर्गा के सामने, प्रणाम ही नहीं कर रहा है। तो राजा ने कहा, कमलाक्ष प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो, कमलाक्ष ने कहा नहीं मैं प्रणाम नहीं कर सकता, कहते शास्त्रों के अनुसार सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, शास्त्र आदि हमें यही कहते हैं कि कृष्ण की ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण कहते हैं मनमना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कार, मुझे प्रणाम करो, मेरी आराधना करो, तो उनके अलावा किसी और को अपना आराध्य बनाना उचित नहीं है। बल्कि वो अंदर की बात नहीं बता रहे थे, वो नहीं बता रहे थे कि मैं इसका पति हूं, किसका, दुर्गा देवी का, ये साक्षात विष्णु है या शिव है, शिव और महाविष्णु का मिलित विग्रह है। तो क्योंकि उसमें शक्ति नहीं, कोई पत्नी अपने पति से प्रणाम स्वीकार करती है तो वो उसके लिए बिल्कुल अनुचित है, बहुत घृणित है, वो नरकगामी हो सकती है भौतिक रूप से। तो अद्वैत आचार्य का मैं उसे प्रणाम नहीं कर सकता, तो सब खींचा जा रहा था, जोर से वर्बल फाइट हो रही थी, तब सब सीनियर जब बोलने लगे, पिताजी बोलने लगे, राजा बोलने लगा, उन्होंने कहा ठीक है मैं जिम्मेदार नहीं हूं, जो कुछ होगा आगे। उन्होंने प्रणाम किया, जैसे झुक गए ना, उसी क्षण जो मूर्ति थी दुर्गा जी की, दुर्गा देवी की, टुकड़े टुकड़े हो गए, छोटे छोटे पीस हो गए, सारा पीस खत्म हो गया, शांति खत्म हो गई, हाँ पीस टुकड़ों में बढ़ गया। तो फिर सब हैरान हो गए, क्या हो गया, क्योंकि उनमें वो सामर्थ्य नहीं था अपने पति से प्रणाम स्वीकार करने के लिए। कलियुगा में डिफरेंट है, ये जब कलि में कुछ भी हो सकता है। तो फिर ये अद्वैत आचार्य अपना वो स्थान छोड़ते हैं और फिर भ्रमण के लिए निकलते हैं। हाँ, उनके पेरेंट्स जब शरीर छोड़ते हैं तो गया आदि जाते हैं, शारदा आदि करके वृंदावन आते हैं, वृंदावन आकर कृष्ण पर, कृष्ण के लीलाओं पर मेडिटेट करते हैं, कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करते हैं, वृंदावन लीला, और उनको स्मरण हो जाता है कि यही कृष्ण अभी कुछ दिनों में नवदीप में प्रकट होने वाले हैं, मैं वृंदावन में क्या कर रहा हूं, यही वृंदावन प्रकट होने वाला है नवदीप धाम के रूप में, मैं वहां चला जाता हूं। लेकिन अद्वैत आचार्य वहां थे,
तब उन्होंने एक विग्रह को ढूंढ के निकाला, वो विग्रह थे मदन गोपाल। मदन गोपाल जिनको अभी मदन मोहन कहा जाता है। तो अद्वैत आचार्य ब्रज का भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने मदन गोपाल को ढूंढ के निकाला, जो वज्रट आपने शुरुआत के दिनों में भगवान के प्रकट होने के बाद स्थापित किए थे मदन गोपाल, और उनकी सेवा आदि की। बल्कि अद्वैत आचार्य को बहुत दुख हो रहा था मदन गोपाल को छोड़कर नवद्वीप जाने में, अभी तक उनका विवाह नहीं हुआ था। तो जब वो निकल रहे, सोचा मैं इस विग्रह को ले जाता हूं, इतने बड़े विग्रह कहां ले जाएंगे सर पर, तो भगवान कहते हैं इसका फोटो खींच के ले जाओ। हम फोटो मतलब पेंटिंग बनाओ, तो एक पेंटिंग बनाया गया, वो अपने साथ ले गए मदन गोपाल की उस पेंटिंग को, और कहां पहुंचे, शांतिपुर पहुंचे। हाँ, पहले उन्होंने शांति भंग कर दी थी, अभी शांतिपुर में निवास करने लगे। लेकिन शांतिपुर में भी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, अद्भुत अद्भुत कार्य हैं। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, हाँ, और चैतन्य मंगल, और कई सारे ग्रंथ अद्वैत आचार्य के लीलाओं का वर्णन करते हैं। मैं भी, आप उनकी लीलाओं को कंपाइल करोगे तो कम से कम 1000 पेज का ग्रंथ बनेगा, केवल किसके बारे में, अद्वैत आचार्य के बारे में। इतनी सारी लीलाएं हैं, इतनी सारी घटनाएं हैं। तो ऐसे अद्वैत आचार्य शांतिपुर में आके रहे, वहां के जो ब्राह्मण थे उनके जो दो कन्याएं थे उनसे उन्होंने विवाह किया, क्योंकि भगवान हमेशा अपनी शक्तियों के साथ होते हैं। हाँ, भू शक्ति और स्त्री शक्ति, नीला शक्ति, नीला मीन्स लीला शक्ति, तो ये तीन शक्तियों के साथ भगवान हमेशा होते हैं। आप दक्षिण भारत जाएंगे तो वहां भगवान हमेशा चतुर्भुज नारायण है या विष्णु है, तो उनके इधर और इधर श्री शक्ति, भू और श्री शक्ति, लक्ष्मी और भू देवी, श्री देवी। आप जाएंगे तो पुजारी कहेंगे ये रहा भगवान का मुख कमल, वहां अल्टर के अंदर लाइट नहीं है, बाहर थोड़ा सा लाइट रखते तो दिखता है अल्टर के विग्रह, लेकिन आपको फिर वो पुजारी दीप लेंगे, दीप लेकर वो बड़ा अच्छा लगता है, दीप लेकर ऐसे दिखाएंगे ये रहे भगवान का कमल नयन, उनका नाम बोलेंगे, ये रही भू देवी, ये रही श्री देवी, हाँ लक्ष्मी देवी। तो इस प्रकार से आप दर्शन करते हो, तो वहां उसी प्रकार से अद्वैत आचार्य दो शक्तियों को स्वीकार करते हैं, श्री देवी जो श्री है सीता ठाकुरानी, और जो भू देवी है नीला। और फिर अद्वैत आचार्य उनसे विवाह के उपरांत जब शांतिपुर में निवास कर रहे थे, तो माधवेंद्रपुरी कहां से निकल पड़े थे, यहां से वृंदावन से, क्या लाने के लिए जा रहे थे। अभी तो सुना था हमने पिछले सैटरडे, दो सैटरडे से वही सुन रहे हैं, चंदन लाने के लिए निकले। तो चंदन लाने के लिए जाते जाते वो रुक गए अद्वैत आचार्य के घर में, और अद्वैत आचार्य का दीक्षा नहीं हुआ था, उन्होंने उनको दीक्षा प्रदान की अद्वैत आचार्य ने। माधवेंद्रपुरी ने अद्वैत आचार्य को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, बल्कि वो भगवान है लेकिन उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन जनमानस को ये शिक्षा प्रदान करने के लिए वो स्वीकार करते हैं। फिर माधवेंद्रपुरी रेमोना जाते, खीरचोरा गोपीनाथ, जगन्नाथपुरी आदि। तो ऐसे हाँ जो अद्वैत आचार्य है, अद्वैत आचार्य जगन्नाथ नहीं, जगन्नाथपुरी नहीं, तो शांतिपुर में जब निवास कर रहे थे, और उनके दो घर थे, एक था नवद्वीप में और एक था शांतिपुर में। तो कभी कभी अपने शांतिपुर के घर में रहते थे, कभी कभी नवद्वीप में रहते थे। तो जब वो नवद्वीप में रहते थे तो नवद्वीप के लोगों की स्थिति को देखकर उनको बहुत दुख होता था। नवद्वीप में वो रोया करते थे, वो देखते थे कि नवद्वीप के जो लोग हैं कोई कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं कर रहा है, कोई भगवत गीता को सुन नहीं रहा है, कोई भागवतम की चर्चा नहीं कर रहा है, सब लोग कोई कुत्ते की पूजा कर रहा है, कोई सुअर की पूजा कर रहा है। उस समय भी दो कुत्तों का विवाह किया जाता था नवद्वीप के लोग, और इतना ही नहीं बल्कि जो लोग हैं धनाढ्य लोग, वो रात भर काली दुर्गा आदि का जागरण करते रहते थे, अनवांटेड चीजें करते थे, और जितना भी अपना धन है वो अपने पुत्री और पुत्र आदि के विवाह में व्यय करते थे अनावश्यक, और कोई भगवत भक्ति का लवलेश नहीं था, सब लोग माया की सेवा में लगे थे, तो आद्वैत आचार्य एक ऐसे थे जिन्होंने अपने आंगन में एक टोल, टोल का मतलब स्कूल खोला था, और वहां वो गीता भागवत और शास्त्रों की चर्चा करते थे, उस पर शिक्षा प्रदान करते थे। बहुत रेयरली नवदीप में भगवान का नाम सुनाई देता था। कब? यदि कोई व्यक्ति गंगा स्नान जाता था तो डुबकी लगाते समय गलती से कोई कहता था गोविंदाय नमः, माधवाय, केशवाय आदि, बहुत बहुत गलती से। तो इतनी बुरी स्थिति थी। अद्वैत आचार्य ने सोचा कि ये भगवान आए बिना ये लोग सुधरेंगे नहीं, कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं, इसको ना भगवान आएंगे तभी ये सुधरेगा, मुझसे तो सुधर नहीं रहा है, तुम क्या सोचते हैं? पिताजी कहते बच्चों के लिए। तो अद्वैत आचार्य ने सोचा नहीं होगा, तो अद्वैत आचार्य ने क्या किया, भगवान को उन्होंने बुलाया, लाउड, कितने पावरफुल है अद्वैत आचार्य। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, दया करो सीतापते अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाए चैतन्य नेता। उनका जो कृपा बल है, कृपा का जो शक्ति है, वो बहुत पावरफुल है अद्वैत आचार्य की। अब उनकी कृपा बल यदि किसी भक्त पर हो जाता है तो निर्गौर नित्यानंद उसके हो जाते हैं बहुत सरलता से। तो ऐसे अद्वैत आचार्य ने सोचा कि इन लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है, तो अद्वैत आचार्य फिर भगवान को ये करते हैं, पुकारते हैं, आचार्य गोसाई प्रभु भक्त अवतार कृष्णावतार है तू जहार ओंकार। ओंकार का मतलब है ऊंची गर्जना। तो अभी वो गर्जना करते, पहले वो देखते हैं कि नवदीप के लोगों का क्या हो रहा है। हाँ, तो चैतन्य चरितामृत के कुछ बयान में पढ़ता हूँ किस प्रकार महाप्रभु को प्रकट करने की एक योजना, एक युक्ति उनको समझ में आती है। प्रकटिया देखिया आचार्य सकल संसार कृष्ण भक्ति गंधहीन विषय व्यवहार। तो अद्वैत आचार्य प्रकट हुए और उन्होंने देखा कि सारा जो संसार है कृष्ण भक्ति से विहीन है, सारे लोग भौतिक व्यापारों में मग्न हैं। केह पापे केह पुण्य करे विषय भोग भक्ति गंध नाही जाते जाय भवरो। कुछ लोग फालतू के पुण्य कर्म कर रहे, पाप कर्मों में रत है, कोई व्यक्ति भक्ति में मग्न नहीं है, कैसे लोग भव सागर से छुटकारा पा सकते हैं। लोक गति देखी आचार्य करुणा हृदय विचार करे न लोकेर कैसे हितहाय। तो ये आचार्य का मतलब ही है जिसका हृदय करुणा से भरा हो, जिसके हृदय में सदैव दया उमड़ रही हो दूसरे जीवों के लिए, जैसे श्रील प्रभुपाद है आचार्य। तो आचार्यों का एक प्रमुख लक्षण है, तो ये अद्वैत आचार्य के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। तो जब अद्वैत आचार्य ने देखा कि संसार के लोग भक्ति के कार्यकलापों से दूर हैं, तो वो सोचने लगे कि इनका हित कैसे हो सकता है। आपने श्री कृष्ण जदे करे न अवतार आपने आचार्य भक्ति करे न प्रचार। यदि स्वयं कृष्ण अवतरित होंगे और अपने आचरण से यदि कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे तभी यह संभव है। नाम विनु कलि काले धर्म नाही आर कलि काले कैचे हवे कृष्ण अवतार। तो उन्होंने सोचा, शास्त्र तो कहते हैं कि नाम के बिना कलियुग में कोई धर्म नहीं है, लेकिन कलियुग में भगवान भी अवतरित नहीं होने वाले हैं, वो तो नाम के रूप में अवतरित हो गए हैं, तो स्वयं कैसे होंगे, वो सोचने लगे। शुद्ध भावे करीब कृष्णेर आराधन निरंतर सदैन्य करीब निवेदन। तो इन्होंने सोचा, मैं भगवान कृष्ण को अवतरित करके ही रहूंगा, ये है दृढ़ता, दृढ़ विश्वास। उन्होंने सोचा, मैं अभी क्या करूंगा, शुद्ध भाव से भगवान कृष्ण की आराधना करूंगा। हम कहते ना शुद्ध भक्ति करो, प्योर डिवोशनल सर्विस। मिश्र भजन आदि से भगवान अवतरित होने वाले नहीं है, भगवान अवतरित होंगे हमारे हृदय में जब शुद्ध भक्ति का अनुपालन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण का शुद्ध भजन करूंगा, कैसे, विनीत भाव से, बड़े ही दीनता से, विनम्रता से। आनिया कृष्ण करो कीर्तन संचार तबे से अद्वैत नाम सफल अमार। ये कहां से आ रहा है जो भाव। हमें कहते ना कि जब तक मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा तब तक ये काम नहीं करूंगा, मेरा नाम ये नहीं है जब तक मैं काम नहीं करके दिखाऊंगा। तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि मेरा अद्वैत नाम तभी सार्थक हो सकता है जब मैं कृष्ण को अवतरित करके रहूंगा। तो उस समय क्या हुआ, हाँ उस समय वो ग्रंथ पढ़ रहे थे। रीडिंग का कितना महत्व है, कभी भी पावरफुल चीज आपके दिमाग में आ सकती है और आपका जीवन परिवर्तित कर सकता है। तो अद्वैत आचार्य ने जब शास्त्र अध्ययन किया था तो ये जब वो विचार कर रहे थे कि मैं भगवान को अवतरित करके रखूंगा, तो उसके उस समय एक श्लोक याद आया। श्लोक का याद करना कितना महत्वपूर्ण है, हाँ। तो एक श्लोक याद आया, कौन से ग्रंथ का श्लोक था, गौतमीय तंत्र का। वो श्लोक था तुलसी दल मात्रेण जलक्ष छुलके नवा विक्र नेते स्वात्मान भक्त्योभ्यो भक्त वत्सला। ये श्लोक याद आया, अरे भगवान अपने आप को बेच डालते हैं उस व्यक्ति के हो जाते हैं जो व्यक्ति बड़े प्रेम पूर्वक भगवान कृष्ण को हाँ क्या करता है, तुलसी दल और थोड़ा सा जल रोज अर्पित करता है, भगवान उस व्यक्ति के हो जाते हैं। कुछ और करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, तुलसी दल और थोड़ा अंजलि भर के जल। तो अद्वैत आचार्य का अरे ये तो बड़ी अमेजिंग चीज है। एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम यदि भगवत गीता के एक श्लोक पर भी फेक करें और उसका अनुसरण करें तो सक्सेस है हमारा जीवन। इसलिए प्रभुपाद ने कहा ना सारे श्लोक है, एक श्लोक इनफ है, एक श्लोक नहीं कितना आधा, आधा भी नहीं उसका मत भक्त। भगवान कहते ना मन मना भव भव मत भक्त, ये भी एक दो ही शब्द है, इसका आचरण कोई करे तो परफेक्शन है। तो इन्होंने सोचा कि ये करता हूं, यही श्लोक आचार्य करे विचारान कृष्ण के तुलसी जल दे जय जान। ये श्लोक पर विचार करते करते उन्होंने दूसरे दिन शुरू किया, रोज तुलसी दल और गंगा जल। उनके पास शालिग्राम विग्रह थे, आज भी आप जाते हो शांतिपुर तो आपको दर्शन करने को मिलेंगे वो शालिग्राम शिला। तारु न शोलिते कृष्ण करे न चिंता जल तुलसी रसमा किछु घरे नाही था। अद्वैत आचार्य ने कहा कि वास्तव में कृष्ण को खरीदने के लिए घर में हमारे पास धन नहीं है, हम अपने आप को बहुत धनी मानी समझते हैं लेकिन हम कृष्ण को खरीद नहीं सकते। कृष्ण को खरीदने के लिए सर्वोत्कृष्ट धन हर एक व्यक्ति के घर में होना चाहिए या है, वो क्या है, तुलसी का जल दल और थोड़ा गंगा का जल आदि। तो ये रोज वो करने लगे, अर्पित करने लगे बड़े ही प्रेम पूर्वक। और फिर हाँ भगवान चैतन्य अवतरित, कुछ समय बीता उन्होंने सोचा अभी तक क्यों नहीं हो रहे अवतरित, तो उनको ना गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा चैतन्य भागवत में अलग जगह आता है जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं अभी ये लोग सुधरेंगे नहीं, मैं क्या करूंगा, यदि कृष्ण अवतरित नहीं होंगे तो मैं अपनी चार भुजाएं निकालूंगा। और सही में अवधी शरीर से सारे भक्त बैठे थे उनके स्कूल में, चार भुजाएं आ गई अद्वैत आचार्य की, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में, खैर चक्र के द्वारा सबका विनाश करूंगा। तो फिर थोड़ी देर में उन्होंने फिर से अंदर ले लिया अपनी भुजाएं। फिर कुछ दिनों के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। तो चैतन्य महाप्रभु को अवतरित करने के जो प्रमुख कई कारण है, उनमें एक कारण है कि भगवान चैतन्य आते हैं अद्वैत आचार्य के कारण हाँ इस जगत में प्रकट हो जाते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु सची माता के गर्भ में थे, 10 महीने हो गए थे, बाहर ही नहीं आ रहा था बालक, तो अद्वैत आचार्य को पता चला सची माता के गर्भ में साक्षात नारायण कृष्ण ने वास कर रहे हैं। तो अद्वैत आचार्य गए, अद्वैत आचार्य उनके गुरु हैं, सची माता को उन्होंने दीक्षा दी है, जगन्नाथ मिश्र को दीक्षा दी है। वो गए और वो तो लज्जित हो गए, अद्वैत आचार्य आए और प्रणाम करने लगे। क्यों प्रणाम करने लगे, आपके गर्भ में कौन है, कृष्ण है, और परिक्रमा करने लगे उनके, उनको बीच में खड़ा कर दिया। सची माता बेचारी खड़ी है हाँ गर्भवती, और परिक्रमा करने लगे, कई सारे परिक्रमा श्लोक का उच्चारण कर रहे थे। और इस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य अद्वैत आचार्य के लिए हाँ प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि आद्वैत आचार्य सारे जीवों का उद्धार चाहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि मुझे अद्वैत आचार्य के द्वारा अद्वैत आचार्य के कारण मैं प्रकट हो गया। तो ऐसे अद्वैत आचार्य की कई सारी लीलाएं चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवतम में है, तो आप सब पढ़ सकते हैं। बहुत मधुर मधुर लीलाएं हैं। और एक लीला है जब जिस प्रकार से अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को प्रकट किया था और अप्रकट कराने का कारण भी कौन थे? अद्वैत आचार्य। तो एक बार जब जगन्नाथपुरी में फाइनल ये लीलाएं आती है, इनके बीच में तो बहुत सारे लीलाएं हैं। संन्यास लेने के बाद सबसे पहले किसी के घर गए चैतन्य महाप्रभु, किसके घर में रह जाकर? अद्वैत आचार्य। पहली दीक्षा, दीक्षा के बाद क्या होनी चाहिए? भिक्षा, और फिर शिक्षा। तो फिर दीक्षा के बाद भिक्षा के लिए अद्वैत आचार्य के घर गए। अद्वैत आचार्य के घर रहे, सारे भक्तों को उन्होंने शिक्षा दी और फिर वहां से जगन्नाथपुरी चले गए। पूरा एक दो अध्याय चैतन्य चरितामृत में उसी का वर्णन है। तो ऐसे जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने जगदानंद पंडित को भेजा था, नवद्वीप में जाओ और सारे भक्त कैसे हैं वो थोड़ा पता करो। तो अद्वैत आचार्य भी जगन्नाथपुरी में थे, तो वो जब यहाँ आए नवद्वीप में, अद्वैत आचार्य आए और ये जगदानंद भी जगन्नाथपुरी जाने वाले थे वापस। तो अद्वैत आचार्य ने कहा, हे जगदानंद, तुम अभी जा रहे हो तो तुम्हें मैं एक मैसेज देता हूं, एक संदेशा लेकर जाओ। तो किसको दे दो संदेशा? चैतन्य महाप्रभु को दे दो। तो उन्होंने ना चिट्ठी लिखी, खत। अभी तो चिट्ठी पत्र आदि तो भूल ही गए लोग, अभी ई का जमाना है, ई जगत, ई वर्ल्ड। तो उन्होंने लेटर लिखा, उसमें उन्होंने दो श्लोक लिखे और वो श्लोक ऐसे थे कि महाप्रभु बिल्कुल स्तब्ध हो गए। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने बोलना छोड़ दिया, केवल एक ही चीज करने लगे, रोना शुरू कर दिया। तो जब जगदानंद पंडित निकल रहे थे, तो उन्होंने एक लेटर दिया, उसमें कहा गया था, तर्जा प्रहेली आचार्य कहे न ठारे छोरे, प्रभु मात्र बुझे न केह बुझे देना पारे। तर्जा प्रहेली मतलब एक एक शब्द है जिसके दो अलग अलग अर्थ हो सकते हैं ऐसे वाक्यों में। जैसे युधिष्ठिर और कुंती आदि को जब भेजा जा रहा था, जब लक्षा ग्रह बनाया था, तो जाते जाते अभी वो विदुर बोल नहीं पाए, लेकिन विदुर ने क्या किया, वहां एक ऐसी भाषा में बोले जो किसी को समझ में नहीं आई, इंग्लिश भाषा थी, उसको म्लेच्छ भाषा, महाभारत में वो शब्द आया, म्लेच्छ लैंग्वेज में विदुर बोले। वो लैंग्वेज किसको आती थी? युधिष्ठिर को आती थी और विदुर को आती थी। तो उसका ट्रांसलेशन किया कि आगे ये भाषा कौन सी थी? इंग्लिश लैंग्वेज। और आगे वो प्रमुख भाषा बन गई है, म्लेच्छ भाषा क्या हो गई? प्रमुख। वो नहीं आती तो अरे आप भक्ति में क्या आता है आपको? इसका में भी बड़ा प्रॉब्लम है, इंग्लिश नहीं आती, आपको भक्ति आती है कि नहीं आती? फिर कई बार बड़े से डिप्रेस हो जाते कई बार। तो म्लेच्छ भाषा है। तो अद्वैत आचार्य ने एक पहेली लिख दी जिसका अर्थ केवल दो ही लोगों को पता था, एक तो लिखने वाला और जिसके बारे में लिखा गया था वही महाप्रभु। तो अद्वैत आचार्य ने लिख के दे दिया, प्रभु रे कहे अमार कोटि नमस्कार, ये निवेदन तार शरण अमार। हे जगदानंद, तुम जगन्नाथपुरी जाओगे ना, मेरा कोटि प्रणाम कहो, एक प्रणाम नहीं कितने कोटि नमस्कार। और ये जो निवेदन छोटा सा मैं लिख के दे रहा हूं, ये भी दे दो साथ साथ। तो निवेदन क्या था? बड़ा पावरफुल है। वो कहते हैं, बाउल के कहे लोक है ना बाउल, बाउल के कहे हाटे ना भी काए चावल। बाउल का मतलब है पागल को जाके बोलो। अद्वैत आचार्य ने क्या लिखा, तुम जगन्नाथपुरी जा रहे हो ना, वहां जाकर एक पागल वहां रहता है, कौन है वो बैड पर्सन? हाँ, ये अद्वैत आचार्य ने ऐसे नहीं कि इन्होंने कोई नया नाम रख दिया, बल्कि महाप्रभु ने पहले ही बोला था जब मेरा दीक्षा हो गया, किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार बल, जपिते जपिते मंत्र करी ल पागल।
वो दीक्षा हुआ, कुछ दिन जप कर रहे थे तो महाप्रभु ने कहा गुरु के पास गए, हे ईश्वरपुरी आपने कौन सा मुझे मंत्र दिया है, जितना जप करता ना उतना पागल हो जाता हूँ। तो ये पागल का जो पॉजिटिव डेजिग्नेशन है वो महाप्रभु ने पहले से अपने साथ जोड़ दिया था। तो आदित्याचार्य ने कहा कि जगन्नाथपुरी पहुंचोगे तो उस पागल को जाकर बोलो कि लोक है न बाउल, लोग अभी यहाँ सारे पागल हो गए हैं। कहा नवद्वीप आदि बंगाल में सारे लोग पागल हो गए हैं, बाउल के कही हटे ना भी काये चावल। उस पागल को जाकर बोलो, हटे मीन्स बाजार में अभी चावल की बिक्री नहीं हो रही है, कोई भात को खरीद नहीं रहा है, चावल खरीद नहीं रहा है। अभी क्या समझ में आएगा इसमें, कुछ समझ में आ रहा है, भात भोजन याद आ रहा है नहीं। तो फिर आगे वो कहते हैं बाउल के कही काय नाहिक आउल, बाउल के कही यहा कही अच्छे बाउल। तो उन्होंने कहा बाउल के कही, फिर से उस पागल को बोलो काय नाहिक आउल कि यहां अभी कोई भी व्यक्ति भौतिक जीवन में इंटरेस्टेड नहीं है, हर एक व्यक्ति कृष्ण प्रेम में क्या हो गया है, मत हो गया है। बाउलों के कही उस बाउल पागल को जाके बोलो कि ये दूसरे पागल भी यही बोल रहा है। आदित्याचार्य ने कहा मैं पागल हूं, मैंने भी यही चीज बोली है। तभी महाप्रभु लेटर लेके गए हैं केतश्वरी जगदानंद हासे तेरा गिला नीला चले आसे तबे प्रभु ने कही लगे, लेटर लेके गए जगदानंद पंडित ने सुना तो हंसने लगे और जाकर महाप्रभु को दिया या बताया। तर्जाश्वरी महाप्रभु ही शत हासिला तारजे आज्ञा बलि मौन धरिला। महाप्रभु ने सुना तो पहले तो हंसे थोड़े, फिर बाद में मौन हो गए। जानी जाओ स्वरूप गोसाई प्रभु रे पूछिला ए तर्जा अर्थ बुझे ते नारिला। तो स्वरूप दामोदर भी इस जो पहले से ये शब्द थे इनके अर्थों को समझ नहीं पाए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु समझ गए थे। दूसरे ग्रंथ में वर्णन है, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, एक ग्रंथ प्रेम विलास में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु उस लेटर को लेकर जगन्नाथ के सामने गए, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के सामने गए और वो लेटर पढ़ने लगे। देखो आदित्याचार्य ऐसा लिख रहा है मेरे बारे में, जगन्नाथ को कहते हैं, रोने लगे महाप्रभु। हाँ प्रभु कहे आचार्य हय पूजक प्रबल आगम शास्त्र रविधि विधान कुशल। महाप्रभु ने कहा जो आदित्याचार्य है ना ये पूजाओं में बहुत एक्सपर्ट है, शास्त्र आदि की बहुत विधि विधानों को बहुत अधिक से कुशलता से जानता है। उपासना लागी देवे करें आवाहन पूजा लागी कत काल करें निरोधान, पूजा निर्वाहर है पाछे करें विसर्जन तरचार ना जाने अर्थ की बात आरमान। तो उन्होंने कहा कि आदित्याचार्य पूजा विधि में बहुत अधिक कुशल है, जब विग्रह की पूजा करते तो भगवान को आमंत्रित किया जाता है, कुछ समय पूजा के बाद फिर इस विग्रह को वापस भेज दिया जाता है। हाँ तो ये शास्त्र विधान भी है। तो उन्होंने कहा महाप्रभु ने सोचा अभी मेरे जाने का समय आया है, आदित्याचार्य चाहते कि अभी आप मत रहिए इस जगत में, आप चले जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु से ही दिन है प्रभु आर दशा है कृष्ण न विच्छेद दशा विगुण बाड़ी। उस दिन से महाप्रभु ने किसी से मिलना किसी से बात करना सब कुछ बंद कर दिया जगन्नाथपुरी में, और केवल श्रीमती राधिका के विरह में उच्च स्वर से रोने लगे विलाप करने लगे, स्वरूप दामोदर के संग में विद्यापति चंडीदास के गीतों को सुनने लगे और कुछ ही दिनों में इस जगत से अप्रकट हो गए चैतन्य महाप्रभु। तो आदित्याचार्य बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है, चैतन्य महाप्रभु आदित्याचार्य से बहुत प्रीति रखते थे। आदित्याचार्य जब चैतन्य महाप्रभु सबको प्रेम दे रहे थे तो महाप्रभु कोई भक्त आपकी माँ को भी प्रेम दीजिए, कहते नहीं दूंगा। कहते क्या किया, उसने ना आदित्याचार्य का अपराध किया है, अभी अपनी माता को भी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम से वंचित रख रहे हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये सिखाना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति वैष्णव के प्रति अपराध करता है, निंदा आदि करता है, तो वो व्यक्ति कदापि ही कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं करेगा। महाप्रभु चैतन्य भागवत में कहते हैं कि वह यदि कोई सन्यासी भी हो, यदि वो भगवत भक्तों के प्रति अपराध करता है, तो भी उसको मैं प्रेम नहीं दूंगा, बल्कि छोटा सा छोटा भक्त क्यों ना हो, वो सरल हृदय का है, वो मेरे कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का अधिकारी है। उसके आगे श्लोक में वो कहते कि यदि शिवजी के समान भी कोई शक्तिशाली क्यों ना हो, वैष्णवाना यथाशंभु, कोई कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना हो, यदि भक्तों से द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, निंदा आदि करता है, तो उस व्यक्ति को मैं कृष्ण प्रेम से वंचित करूंगा कई जीवनों तक। तो इस प्रकार से महाप्रभु अपनी माता को भी प्रेम नहीं देना चाहते थे, तो भक्त लोग गए अद्वैत आचार्य के पास। अद्वैत आचार्य ने सुना, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो महाप्रभु की माता है, मेरी माता है। हाँ, तो वो सुनकर ही अद्वैत आचार्य मूर्छित हो जाते हैं। वहां तो सच्ची माता दौड़ के आती है, सबके सामने अद्वैत आचार्य के चरणों की क्या करती है, धूलि लेते हैं, अपने मस्तक में लगाती है। जिसके प्रति आप अपराध करते हो, उनकी उनसे ज्यादा क्षमा याचना मांगना, उससे वो अपराध खंडन हो जाते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा, जिस प्रकार से पांव में कांटा घुस जाता है, तो गांव में उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी प्रकार से जिस वैष्णव के प्रति आप ईर्ष्या द्वेष निंदा आदि का भाव है, अपराध करते हो, तो उनसे ही जाकर क्षमा याचना करनी होगी, तभी आप मुक्त होंगे। जब महाप्रभु ने देखा कि उनकी माता बिना किसी लज्जा के, बिना किसी भय से अद्वैत आचार्य के चरणों की धूलि ले रही है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा अभी योग्य हो गई है कृष्ण भक्ति को स्वीकारने के लिए। हाँ, तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य का जो लीलाएं हैं बहुत ही उदार है। हाँ, उनका नाम जैसे मैंने शुरुआत में कहा अद्वैत आचार्य इसलिए है, हाँ, क्योंकि वास्तव में वो अपने आचरण से कृष्ण भक्ति की शिक्षा प्रदान करते हैं। सच्ची माता ने इसलिए थोड़ा सा अपराध, इतना अपराध नहीं था, वो ये सोचते थे कि देखो मेरा बेटा विश्वरूपपुर के पास जाता था, क्या उसने पढ़ाया, उसने संन्यास लेके घर छोड़ के चला गया। वो कहते थे कि ये अद्वैत नहीं है, ये द्वैत है, इसमें द्वंद है, दो चीजें हैं रखता है। तो इस प्रकार से सोचते थे कि मेरा दूसरा बेटा भी संन्यास ना ले। तो अद्वैत आचार्य का प्रति थोड़ा सा वो था कि क्या क्या इन्होंने मेरे बेटे को सन्यासी बना दिया, ये विचार था, कोई ऐसी ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं थी। अब सोचो सच्ची माता में इतनी छोटी सी चीज थी, हम अपने जीवन से देखेंगे तो हमारे हृदय में कितनी सारी गंदगी भरी पड़ी है, तो कैसे हम महाप्रभु की कृपा को अनुकूल कर सकते हैं। तो आज अद्वैत आचार्य का आविर्भाव तिथि है, और उनसे याचना करनी चाहिए, उनकी कृपा की भीख मांगनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद शांतिपुर जाते थे अमेरिका जाने से पहले कई बार, और जाकर अद्वैत आचार्य के जो स्थान है, वह शांतिपुर में जो टेंपल है, वहां जाकर गिड़गिड़ाते थे पूरे दिन, अद्वैत आचार्य के वो जो विग्रह आदि के सामने जप करते थे, बैठकर रोते थे कि अद्वैत आचार्य मुझे शक्ति दो, मेरे गुरु के आदेशों का पालन करने का सामर्थ्य आप मुझे प्रदान कीजिए। वहां का एक जो पुजारी था वो रोज देखता था, पहले तो देखा कि ये व्यक्ति सफेद धोती कुर्ता में आता था, रोता था अद्वैत आचार्य के चरणों में, गिड़गिड़ाता था, और कुछ दिनों के बाद देखा कि ये व्यक्ति सैफ्रॉन में आया है। प्रभुपाद अपने गृहस्थ जीवन में जाते थे वहां अद्वैत आचार्य से कृपा याचना मांगने के लिए, क्योंकि तब कृपा बले पाए चैतन्य ने, तो उनका कृपा बल बहुत पावरफुल है। प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले अद्वैत आचार्य के वहां उस स्थान में गए, किसी और स्थान नहीं गए ज्यादा, और वहां जाकर गिड़गिड़ाए, रोए, उनसे भिक्षा कृपा की याचना की, और फिर जब उस कृपा को लेकर चले गए। ये जो कब पता चला, जब प्रभुपाद के अमेरिकन शिष्य शांतिपुर गए थे, और वहां विदेशी लोगों को उस पुजारी ने देखा ही क्या, तिलक धोती कुर्ता, स्त्रियां बच्चे, प्रभु कहां के हो, कौन से लोग से आए हो, कहते हम यहाँ विदेश से आए, लेकिन ये परिवर्तन, कहते हमारे गुरु, कहते कौन है आपके गुरु, भगवत दर्शन मैगजीन दिखाया, किसका फोटो था, श्रील प्रभुपाद, ओ ये तो रोज ही आते थे, उन्होंने कहा यही तो आते थे, यही तो रोया करते थे यहाँ आकर। तो उन्होंने बताया प्रभुपाद के बारे में, यही घटना बताए, फिर वो मायापुर आए, थे वो डिवोटी, उन्होंने चैतन्य महाराज को ये घटना बताई थी प्रभुपाद के बारे में। तो इस प्रकार से अद्वैताचार्य का जो स्थान है बहुत महत्वपूर्ण है, साक्षात ईश्वर है, भक्त अवतार के रूप में है। और श्रील प्रभुपाद ने अपने यंग एज में जब वो ड्रामास में भाग लेते थे तो उन्होंने किसका रोल किया था? अद्वैताचार्य का। आप लीलामृत पढ़ेंगे शुरुआत का, प्रभुपाद से बड़ा यह है मिलन है। अद्वैताचार्य आविर्भाव महामहोत्सव के श्रील प्रभुपाद।